हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद के माता पिता की बरसी होने के कारण पूरे दिन चौहान फैमिली उसी में व्यस्त थी। हर एक काम अच्छे से निपटाने में उन्हें रात को देर हो चुकी थी। अब तो उन सबको बस आराम करना सूझ रहा था। हर कोई कल के दिन की छुट्टी रखने के बारे में सोच रहा था। वेद ने उन सबको आराम करने को कहा और खुद बाहर आ गया था। प्रतीक के लिए भी आज का दिन मायने रखता था, लेकिन सब ने महसूस किया कि वो थोड़े टाइम के लिए पूजा में था और फिर बाद में गायब हो गया था। वेद ने प्रतीक को कॉल किया तो पता चला कि शिवांशा का भाई रोहन उसे मिल गया था। वेद को लगा कि प्रतीक ने उसे मार दिया है, लेकिन ये सुनकर उसे झटका लगा कि वो उसके भाई के साथ हॉस्पिटल में था। वेद यही चाहता था कि वो शिवांशा के भाई को मार दे, पर प्रतीक ने उसे हॉस्पिटल आने को कहा। मामला काफी सीरियस लग रहा था। वेद तुरंत प्रतीक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। वेद वहां गया तो प्रतीक ने अच्छी खासी सिक्योरिटी ले रखी थी, उसलिए रूम भी VIP बुक किया गया था ताकि कोई उसकी तरफ ना आए। जैसे ही वेद वहां पहुंचा, उसने प्रतीक से नाराजगी जताते हुए कहा, ये क्या चल रहा है यहां पर? तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? एक गलती मैंने की थी और अब दूसरी गलती तुमने कर दी। मुझे माफ कर दीजिए भाई, पर बच्चे की हालत देखकर मैं उसे मार नहीं पाया। हॉस्पिटल लेकर आया तो कुछ और भी पता चल रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आपका नाम लेकर मैंने पुलिस को रोक रखा है, प्रतीक ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा। वेद को कुछ समझ नहीं आया। प्रतीक ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने दूर से देखा कि रोहन को काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया था। वेद ने गुस्से में अपनी गर्दन पर हाथ घुमाया और बोला, उस जैसे इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? डोंट टेल मी कि अब तुम उसके ठीक होने का वेट करोगे और फिर मेरा काम करोगे। मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना नहीं है भाई, प्रतीक ने जवाब दिया। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच डॉक्टर भी वहां पहुंच गए थे। वेद को देखकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ मिस्टर चौहान आप यहां पर आ गए, वरना मैं अब आपका और इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे साथ केबिन में आइए। वेद ने उसकी बात पर हामी भरी और डॉक्टर के साथ केबिन में आ गया था। वेद के बैठते ही डॉक्टर ने संजीदा आवाज में कहा, आपके भाई और आदमियों ने काफी अच्छा काम किया है। एक गुंडे से उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई है, ये बहुत अच्छी बात है, पर हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, बच्चे के साथ काफी कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, बच्चे को किडनैप किया गया था तो बहुत मारा पीटा गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस में बात कर लूंगा और बच्चे के ठीक होने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया। वह कैसे भी करके फिलहाल रोहन को यहां से ले जाना चाहता था। अगर पुलिस केस बनता तो वेद के इस मामले में इन्वॉल्व होने की खबर फैल जाती, उसके बाद मीडिया का दखल होता और एक सिंपल सा केस हाई प्रोफाइल केस में बदल जाता। जाहिर सी बात थी, इतना सब होने के बाद वेद को शिवांशा की तरह रोहन को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता। डॉक्टर वेद की बात को समझ रहा था। उसने कहा, शायद आपके भाई ने पूरी बात बताई नहीं है मिस्टर चौहान, पहली नज़र में हमें भी यही लगा था कि बच्चे के साथ टॉर्चर हुआ है। बोलते हुए डॉक्टर कुछ पल रुका और फिर वेद की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप हुआ है मिस्टर चौहान। जैसे ही वेद ने ये सुना, उसे कुछ पल के लिए वो वहीं पर जम गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। वेद को अंकुश से इस दरिंदगी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो एक छोटे मासूम लड़के के साथ ये सब कर सकता है। कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। आर यू श्योर डॉक्टर? ये लड़का, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों के साथ अब्यूज नहीं होता है, पर आपने ठीक से चेक किया है ना? वेद ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल चेक किया है, उसकी मेंटल कंडीशन भी सही नहीं है, किसी को पास नहीं आने दे रहा। अगर आप बच्चे पर्सनली जानते हैं तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए, उनकी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर ने जवाब दिया। वेद ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अंकुश शिवांशा को मोलेस्ट करने की कोशिश करता था, वो सोचकर भी उसका खून खोल जाता था। यहां तो रोहन के साथ उसने रेप तक करवा दिया था। डॉक्टर से बात करके वेद उसके केबिन से बाहर निकला। उसने मन ही मन कहा, कोई इतनी दरिंदगी पर कैसे उतर सकता है? न जाने बेचारे बच्चे ने क्या क्या सहा होगा। देवराज ठाकुर, तुम कितने बुरे इंसान निकले। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे घर वालों को भुगतनी होगी। समझ नहीं आ रहा मैं शिवांशा से इस बारे में बात कैसे करूंगा। वेद सिर पकड़कर वहां पर खड़ा हुआ था, तभी प्रतीक उसके पास आया। प्रतीक ने वेद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं भाई, मेरा भी यही रिएक्शन था और मन किया कि अभी जाकर अंकुश का गला दबा दूं। आप ही बताइए, इतना सब कुछ जानने के बाद कैसे मेरी हिम्मत पड़ती कि एक मासूम को मैं मौत दे पाता। सॉरी टू से भाई, ये मुझसे नहीं होगा। वेद ने प्रतीक की तरफ देखा और हाँ मैं सिर हिलाकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तुम पर नाज है प्रतीक। भले ही हमारे साथ कितना बुरा हुआ होगा, लेकिन खुशी है तुमने आज नफरत भूलकर इंसानियत चुनी। प्रतीक पर गुस्सा होने के बजाय वेद अब उसे शाबाशी दे रहा था। ये आप ही के संस्कार हैं भाई, हमने कभी किसी को बर्बाद नहीं करना चाहा था, लेकिन किस्मत ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया। आई थिंक अब हमें भाभी को बता देना चाहिए, प्रतीक बोला। उसके मुंह से शिवांशा के लिए भाभी शब्द सुनकर वेद उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। प्रतीक तुरंत अपनी सफाई देते हुए बोला, हाँ जानता हूँ वो आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन सबके सामने भाभी कहते हुए आदत हो गई है। मैं यहाँ बच्चे का ख्याल रखूंगा, आप ले आइए उन्हें, उनकी जरूरत पड़ेगी। वेद ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत गाड़ी लेकर निकल गया था। वह घर पहुंचा उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और शिवांशा अपने कमरे में सो रही थी। वेद ने लाइट जलाई तो उसने देखा कि शिवांशा फिर नींद में कसमसा रही थी। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे जगाऊं, ये तो नींद में ही इस तरह तड़प रही है। जब अपने भाई को उस हाल में देखेगी तो न जाने इसकी क्या हालत होगी। आई होप कि ये खुद को संभाल ले, वेद ने धीरे से कहा और शिवांशा के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे, जिस पर वह हड़बड़ाकर खड़ी हो चुकी थी। इतनी रात को वेद को अपने सामने देखकर शिवांशा ने उलझन भरे स्वर में कहा, अब तो मैं अलग कमरे में सो रही हूँ और मैंने आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं की। पूरे दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी जैसा कि आपने कहा था, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि जब तुम कोई गलती करोगी तभी मैं तुमसे बात करने के लिए आऊंगा? वेद ने काफी नरम लहजे में कहा। रोहन की हालत उसने दूर से देखी थी, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया था उसे सुनने के बाद वेद का अंदर से अंदर दिल रो रहा था। आज पहली बार उसने शिवांशा से काफी नॉर्मल तरीके से बात की थी, तो वो हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि शिवांशा कुछ पूछे, वेद बोला, तुम्हारा भाई मिल गया है? जैसे ही वेद ने बताया, शिवांशा की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, पर वेद जानता था कि ये मुस्कुराहट कुछ ही पलों की थी।
क्या सच में आप मुझे उसके पास लेकर चलेंगे? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपको मुझ पर जितना गुस्सा करना है आप कर सकते हैं, मुझे सजा दे सकते हैं, पर उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। पहले ही अंकुश ने उसके साथ बहुत मारपीट की है, वो ठीक तो है ना? शिवांशा ने वेद के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। उसकी आंखें रोहन के बारे में सोचकर नम होने लगी थीं। वेद को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। चलकर खुद ही देख लो, वेद ने इतना ही कहा और शिवांशा को अपने पीछे आने का इशारा किया। जल्दबाजी में शिवांशा ने टाइम तक नहीं देखा था, वो वेद के साथ जल्दी जल्दी चलते हुए उसे फॉलो कर रही थी। जब शिवांशा हवेली के बाहर निकली और उसने अंधेरा देखा तो वो वेद से बोली, रात काफी हो गई है क्या? मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। रोहन से मिलने की एक्साइटमेंट में शिवांशा सब कुछ भूल गई थी। वो वेद से ऐसे बात कर रही थी मानो वो दोनों कितने ही अच्छे दोस्त रहे हों। जब वेद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो शिवांशा बिल्कुल शांत हो गई थी। वो वेद के साथ गाड़ी में उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। शिवांशा पूरी देर बाहर देख रही थी, बस उसे रोहन से मिलने का इंतजार था। जैसे ही वेद ने गाड़ी हॉस्पिटल के आगे रोकी, शिवांशा का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से पूछा, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं? मेरा भाई तो ठीक है ना? वेद ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप आगे आगे चल रहा था और शिवांशा उसके पीछे आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो VIP वार्ड में पहुंच चुके थे, जहां उनकी तैनात की हुई सिक्योरिटी थी। आसपास कोई मौजूद नहीं था। शिवांशा वेद के साथ रोहन के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। उसने कांच की खिड़की से अंदर देखा। डॉक्टर रोहन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। नहीं, नहीं, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मत आना, मुझे छोड़ दो, रोहन रोते हुए चिल्ला रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवांशा डरकर लड़खड़ा गई थी। उसने अपनी घबराहट में वेद की कलाई पकड़ी और जल्दी से कहा, ये इस तरह से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रोहन को क्या हो गया? वो अपने पास किसी को क्यों नहीं आने दे रहा है? अगर कोई और मौका होता और शिवांशा ने वेद का हाथ पकड़ा होता तो वो गुस्से में उसे झटक देता, लेकिन इस वक्त वेद ने कुछ भी करने के बजाय अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, शिवांशा ने रोते हुए कहा। प्रतीक भी वहां पर पहुंच गया था। उसने देखा कि वेद शिवांशा के सवालों के जवाब देने के बजाय वहां चुपचाप अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए खड़ा था। वो समझ गया था कि वेद कभी भी शिवांशा को हकीकत बात नहीं बताएगा। मैं बात करता हूं भाई, प्रतीक बोला। नहीं, ठीक है, मैं देख लूंगा, वेद ने सख्त आवाज में कहा और फिर शिवांशा को अपने साथ पास वाले कमरे में लेकर गया। उस कमरे में वेद और शिवांशा के अलावा और कोई नहीं था। जैसे ही शिवांशा वेद के साथ अकेली आई, उसने वेद के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज कुछ तो बताइए, इस वक्त आप मेरी हालत समझ नहीं सकते कि अपने भाई को इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। आप जानते भी हैं, पिछले 5 सालों से नहीं देखा मैंने उसे, और आज मिल रही हूं तो इस हाल में मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। वेद ने गहरी सांस ली और शिवांशा की तरफ देखकर कहा, देखो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बुरा है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए, अपने भाई के लिए। शायद सिर्फ तुम ही हो जो उसे उसकी इस हालत में सहारा दे सकती हो, तो खुद को तुम्हें स्ट्रांग रखना होगा। क्या क्या हुआ है? शिवांशा ने अटकते हुए कहा। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई के साथ, वेद बोलते हुए रुक गया। उसने कुछ पल रुककर खुद को मजबूत करके कहा, उसके साथ किसी ने रेप किया है। जैसे ही शिवांशा ने सुना, वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि वेद ने उसे थाम लिया। क्या? पर वो तो बच्चा है, शिवांशा ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, पर कहाँ लिखा है कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, या फिर ऐसे केस जेंडर देखकर होते हैं, वेद ने जवाब दिया। शिवांशा बिल्कुल शांत हो गई थी, मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में चली गई हो। वेद को समझ नहीं आया कि आखिर वो उसे तसल्ली दे तो कैसे दें। शिवांशा, वेद ने शिवांशा का नाम पुकारा तो वो रोते हुए जोर से चिल्लाई और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी। उसने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है, वो इतना कैसे गिर सकता है? उसने मुझे कहा था कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे भाई के साथ ये सब करेगा। जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है, मेरी वजह से आज वो इतनी तकलीफ में है। मुझे सच में मर जाना चाहिए, प्लीज मुझे मार डालिए वेद, मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। रोहन ये सब डिजर्व नहीं करता है, शिवांशा रोते हुए बड़बड़ा रही थी। वेद ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर खड़ा किया और समझाते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा कि अगर दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें, और तुम क्यों हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करती रहती हो? मैंने तुम्हें इसलिए यहां लेकर आया था ताकि तुम अपने भाई को संभाल सको, ना कि इसलिए कि खुद बैठकर आंसू बहाओ। रोहन के साथ जो भी हुआ था वो सुनकर शिवांशा बुरी तरह टूट गई थी। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। रोते हुए कब वो वेद के सीने से जा लगी थी उसे भी एहसास नहीं था। तो वहीं वेद उसे एक बच्चे की तरह सहला रहा था, प्यार से समझा रहा था कि वाकई अंकुश की दरिंदगी के पीछे उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो अंकुश के पास रुक जाती तो जो हाल रोहन का हुआ था शायद आज उसकी जगह शिवांशा होती। सो आज आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, वेद शिवांशा से प्यार से बात भी कर रहा है और समझा भी रहा है। हाँ, रोहन के साथ जो हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।